पाठ 14, अध्याय 14। इस अध्याय पर चर्चा करने से पहले मेन बाइबल से जुड़ी एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहूंगा और इसमें एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और कानूनी शब्द शामिल है। यह शब्द है रेक्टेड। रेक्टेड एक ऐसा शब्द है जिसे आप तोरह क्लास में नियमित रूप से सुनेंगे। इसका सीधा सा मतलब है संपादित। और मुझे पता है कि कुछ ईसाइयों को यह सुनकर परेशानी होती है कि आप अपनी बाइबल में मूल शास्त्र नहीं पीआरएच रहे हैं। इन लेखों को समय के साथ कई संशोधनों से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह संशोधन विशेष रूप से पुराना नियम में बहुत मामूली थे। हम जानते हैं कि यह मामला है क्योंकि मृत सागर स्क्रॉल की खोज के साथ, जो कि एसेन द्वारा लगभग 50 ईसा पूर्व से लेकर 70 ईसवी से पहले की में लिखे गए थे, हम उन मृत सागर दस्तावेजों में पाए गए इब्रानी पुराना नियम शास्त्रों के शब्दों की तुलना उन शब्दों से कर पाए हैं जो हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वे लगभग समान हैं। केवल कुछ मामूली वर्तनी भिन्नताएं पाई गई और शायद यहां वहां एक वाक्यांश जो रा या हटाया या संशोधित किया गया था। आम तौर पर किसी व्यक्ति या शहर का नाम जोड़कर, हटाकर या बदलकर, और वह इसलिए क्योंकि उस नाम या शहर को हाल ही में भाषा के विकास के कारण एक अलग नाम या शीर्षक से जाना जाता है। इनमें से किसी भी मामूली बदलाव का अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यह समझे कि इब्रानी में लिखे गए सबसे पुराने नियम के दस्तावेज जो वर्तमान में हमारे आधुनिक बाइबलों में उपयोग में है 900 ईसवी के उत्तरार्ध की प्रतियां थी, क्रूसेडर्स के समय से ठीक पहले की। मृत सागर स्क्रॉल की खोज एक बड़ी छलांग में हमें उस समय से लगभग 1000 साल पीछे ले गई, जो आंशिक रूप से इसलिए हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए यह देखना कि 1000 वर्षों में वस्तुतः कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ था, उन सैकड़ों और हजारों यहूदियों के समर्पण को प्रमाणित करता है जिन्होंने उस 10वीं शताब्दी की अवधि में आगे के उपयोग और वितरण के लिए इब्रानी बाइबिल को हाथ से कॉपी किया था। हम जो तोरह में पुअरेच रहे हैं वह बहुत सटीक है, कम से कम मूल इब्रानी में। जहां हमें कुछ समस्याएं हैं यह है इब्रानी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद, और इब्रानी से दूसरी भाषा में पुराना नियम का पहला अनुवाद ग्रीक में था, और यह मृत सागर स्क्रॉल लिखे जाने से लगभग 200 साल पहले पूरा हुआ था। सेप्टुआजेंट कहलाने वाले पुराना नियम के ग्रीक भाषा के संस्करण को भी सदियों से ईमानदारी से कॉपी करके आगे बढ़ाया गया है, इसलिए यह भी सबसे उपयोगी और सटीक दस्तावेज है। हालांकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, एक संस्कृति और उसकी संबंधित भाषा के विचारों को दूसरी संस्कृति और उसकी संबंधित भाषा में अनुवाद करने में बहुत वास्तविक चुनौतियां हैं। हिब्रू विचार और ग्रीक विचार तब और आज भी मीलों दूर थे, और इब्रानी में ऐसे कई शब्द और विचार हैं जिनका ग्रीक में कोई समानांतर नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा चुनना पड़ा जो करीब हो या कम से कम ऐसा हो। यह समस्या नया नियम के साथ और भी अधिक परेशानी वाली है, क्योंकि सबसे पुराने नया नियम दस्तावेज यूनानी में लिखे गए हैं। फिर भी यह स्पष्ट और निर्विवाद है कि नया नियम के लेखक यहूदी थे। वे यहूदी थे जो पूरी तरह से इब्रानी संस्कृति और इब्रानी विचारों में डूबे हुए थे। हम प्राचीन ग्रीक सेप्टुआजेंट की तुलना प्राचीन इब्रानी पुराना नियम से कर सकते हैं और काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि अनुवाद की समस्याएं कहां हैं। लेकिन यह नया नियम के लिए कुछ अलग है, क्योंकि हमारे पास नया नियम के अपेक्षाकृत कम अंश हैं। वे लेख जो किसी न किसी समय इब्रानी भाषा में लिखे गए थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी यूनानी भाषा से लिए गए हैं, दूसरे ढंग से नहीं। हाल ही में हालांकि यहूदी विद्वानों के एक समूह ने यीशु के दिनों में इब्रानी संस्कृति की समझ में जबरदस्त छलांग का उपयोग करते हुए एक संपूर्ण इब्रानी नया नियम लिखा है, जो हमें पहली शताब्दी के चर्च की बेहतर समझ भी देता है। ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इसराइल द्वारा लिखी गई है, और यह अंग्रेजी और इब्रानी में पूरी तरह से समानांतर पुराना नियम और नया नियम है। बाइबल के किसी भी गंभीर छात्र के लिए एक बहुत ही मूल्यवान उपकरण। अब अनुवाद की समस्या तब और बारहच जाती है जब आप एक इब्रानी विचार लेते हैं, उसे ग्रीक जैसी किसी विदेशी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, और फिर ग्रीक लें और इसे अंग्रेजी जैसी किसी अन्य भाषा में अनुवाद करें। इससे भी अधिक समय के साथ किसी विशेष भाषा के वचन अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। जब पहली किंग जेम्स बाइबल लिखी गई थी तब किसी अंग्रेजी वचन का क्या अर्थ था, आज की तुलना में ये काफी भिन्न हो सकता है।
यहां बात यह है समझें कि किसी दस्तावेज का मात्र अनुवाद अपने स्वभाव से एक संशोधन, एक संपादन है। बस इब्रानी से ग्रीक और फिर ग्रीक से अंग्रेजी में अनुवाद करने से विविधताएं जुड़ जाती हैं। अन्यथा आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ है उसकी बिल्कुल अंतहीन श्रृंखला है? अंग्रेजी में बाइबल संस्करण क्या हैं जो आज हमारे पास हैं? और मत भूलिए, बाइबल का अब वस्तुतः सैकड़ों अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और उनमें से बड़ी संख्या अंग्रेजी से है।
आइए मैं आपको बाइबल का अध्ययन करने के लिए एक छोटी सी सहायता युक्ति देता हूं, विशेष रूप से नया नियम आप में से उन लोगों के लिए जो बाइबल के गंभीर विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में कुछ ईसाई विद्वान आपको बताएंगे और उससे भी कम वास्तव में किसी भी हद तक ऐसा करते हैं, और वह है कई नया नियम पदों के लेखन की उनके पुराना नियम के साथ तुलना करना। क्या यह अजीब लगता है? पुराने नियम के कौन से पद नए नियम में हो सकते हैं? याद रखें, नया नियम में कम से कम 50% प्रत्यक्ष पुराना नियम कोटेशन होते हैं। एक अच्छी अध्ययन बाइबल आपको सटीक रूप से दिखाएगी कि पुराना नियम उद्धरणों के अलावा कौन से नया नियम पद हैं, और यहां तक कि आपको यह भी बताएगा कि आप जिस नया नियम अनुभाग को फार एच रहे हैं उसमें पुराना नियम की कौन सी पुस्तक, अध्याय और पद लाए जा रहे हैं।
केवल इस बात पर ध्यान न दें कि वह नया नियम पद्य या अनुच्छेद एक पुराना नियम उद्धरण है, रुकें, उस पुराना नियम अंश को देखें और उसे पारहें, मानसिक रूप से उस पुराना नियम भाग को नया नियम में डालें जैसे वह पुराना नियम में पढ़ता है। आपके बाइबल संस्करण के आधार पर अक्सर नया नियम में लिखे गए कथित पुराना नियम वचन वास्तव में वही नहीं होंगे जो उसी पुराना नियम मार्ग में लिखे गए हैं। बस एक पल के लिए उसे डूबने दो, क्यों? यदि अनुवादक पूरी तरह से पहचानता है कि जो कहा जा रहा है वह केवल पुराना नियम से एक सीधा उद्धरण है तो क्या शब्दों का सटीक मिलान नहीं होता है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराना नियम का इब्रानी दस्तावेजों से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, जबकि नया नियम का ग्रीक दस्तावेजों से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और ग्रीक अर्थ अक्सर इब्रानी अर्थ से कुछ डिग्री अलग होता है। ग्रीक से अंग्रेजी और इब्रानी से अंग्रेजी में और अनुवाद जो रेन जरेनिया और यह मुद्दे को और भी जटिल बना देता है।
लेकिन निराशा की बात यह है कि और भी बहुत कुछ है। आज प्रत्येक ईसाई संप्रदाय, जिनमें से लगभग 3000 के आसपास हैं, सिद्धांतों और जिसके अनुसार हरेक पंथ का एक समूह चलता है, और सामान्य तौर पर बाइबल अनुवादक सचेत रूप से या अवचेतन रूप से इनमें से एक या दूसरे संप्रदाय के सिद्धांतों और पंथ का पालन करते हैं। इसलिए जब किसी वचन का अनुवाद करने का अवसर आता है तो अक्सर जब मूल में जो लिखा जाता है वह उनके पूर्व कल्पित सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है तो वे उस वचन या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर देते हैं जो संदर्भ से बाहर है, लेकिन जो पद का अर्थ रखता है उन मान्यताओं की सीमाओं के भीतर जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। इसलिए अनुवाद में अक्सर कुछ न कुछ एजेंडा छिपा होता है। यही कारण है कि अध्ययन करने के लिए कई संस्करणों का उपयोग करना और इससे भी बेहतर इब्रानी भाषा और संस्कृति की समझ हासिल करना बहुत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि हर किसी के पास अंग्रेजी अनुवाद को सह संबंधित करने के लिए एक इब्रानी बाइबल हो, क्योंकि भले ही आपके पास इब्रानी में कोई दक्षता नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं कि इब्रानी में दो वचन समान हैं, लेकिन हो सकता है कि दो बहुत दूर के अंग्रेजी वचनों का इस्तेमाल किया गया हो उसी इब्रानी वचन का अनुवाद करने के लिए। फिर किसी को संदेह करना चाहिए और इब्रानी शब्द का गहन अध्ययन करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इब्रानी भाषा के लिए उस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है।
कृपया इसे समझें, बाइबल शून्य में नहीं लिखी गई थी। सभी विचार और वाक्यांश और शब्दों के अर्थ उस युग की इब्रानी संस्कृति के संदर्भ में थे। तो फिर हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि मूल लेखकों के लिए उन वचनों का क्या मतलब था, क्योंकि हमारे लिए उनका बिल्कुल वही मतलब निकाला जाना चाहिए, अन्यथा हम बाइबल को एक जीवित दस्तावेज में बदल देते हैं, अर्थात जो समय के साथ विकसित होने के लिए बना है। अब मैं कोई निंदा जारी नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये इंगित कर रहा हूं कि एक पुराना नियम की तुलना में विभिन्न अनुवादों के बीच नया नियम लेखन में बहुत अधिक भिन्नता है, और यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि नया नियम वह जगह है जहां विभिन्न ईसाई सिद्धांत अपनी नींव पाते हैं और जहां सैद्धांतिक तर्क हैं किसी विशेष संप्रदाय की मान्यताओं का बचाव या आलोचना करने के लिए बनाए गए हैं। शुक्र है पिछले 20 वर्षों में कई यहूदी विद्वान या तो मसीहा में विश्वास करने लगे हैं या कम से कम नया नियम के अध्ययन और विचार के लिए अधिक खुला दृष्टिकोण रखते हैं। नया नियम अनुवादों को समायोजित करने में कुछ महान काम किया जा रहा है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। पहली शताब्दी ईसवी की इब्रानी संस्कृति और विचार नमूना के अनुरूप, इससे भी अधिक जिसे आमतौर पर मृत सागर स्क्रॉल के सामुदायिक दस्तावेज कहा जाता है, उसकी खोज के साथ हम पाते हैं कि नया नियम में आश्चर्यजनक संख्या में वाक्यांश और धर्मशास्त्र हैं। अब तक यीशु और उनके शिष्यों के साथ विचार बिल्कुल नया या अनोखा था। वास्तव में ये धर्मशास्त्र पहले से ही विकास के अधीन थे और यहूदा के जंगल में एसेन अलगाववादियों के साथ वाक्यांश पहले से ही उपयोग में थे। इसलिए जैसा कि मैं कभी कभी आपके लिए तोरह और नया नियम को जोड़ने का प्रयास करता हूं, मैं कभी कभी मृत सागर के कुछ दस्तावेजों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास करने जा रहा हूं ताकि हमें यह समझने में बेहतर मदद मिल सके कि नया नियम लेखकों के दिमाग के लिए कुछ चीजों का क्या मतलब है और वाक्यांश उन विशाल श्रोताओं के लिए क्या मतलब थे जिनसे यीशु ने बात की थी, और यह पिछले 10 से 15 वर्षों में इतिहास में पहले से कहीं अधिक संभव है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मसीह में आपका विश्वास बढ़ेगा और जब हम तोरह और मृत सागर स्क्रॉल का अध्ययन करते हैं तो यह और अधिक मान्य हो जाता है। नया नियम की कुछ रहस्यमय और भ्रमित करने वाली बातें जिन्हें समझने में हमें बहुत कठिनाई होती है, अक्सर मृत सागर स्क्रॉल और पुराना नियम के साथ तुलना की मदद से अधिक स्पष्ट और समझने योग्य और वास्तविक हो जाती है। ठीक है, उस समझ से लैस होकर आइए उत्पत्ति 14 में प्रवेश करें। उत्पत्ति 14 पढ़ें। इस अध्याय में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। हम तोरह के कुछ सचमुच महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं जो भविष्य के लिए मंच तैयार करते हैं। वह क्षेत्र जहां लूत रहने के लिए गया था, जॉर्डन घाटी जो मृत सागर तक फैली हुई थी और इसमें सदोम और अमोरा के शहर भी शामिल थे, मूल रूप से चेरदोर लाउमर नामक राजा द्वारा नियंत्रित एक जिले का हिस्सा था, और चेरदोर लाउमर ने स्पष्ट रूप से पद्य के आरंभ में वर्णित राष्ट्रों और राजाओं के इस छोटे समूह के साथ कुछ प्रकार की पारस्परिक सुरक्षा संधि की थी। अब यहां सूचीबद्ध इन विभिन्न राज्यों के नामों का आधुनिक मानचित्र पर एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुवाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ का अनुवाद किया जा सकता है। एलासर नामक स्थान लगभग निश्चित रूप से अशुअर है, जो निम्रोद द्वारा निर्मित कई प्राचीन शहरों में से एक था और जिसे अंततः असीरिया कहा जाता था। अम्रफेल उन राजाओं में से एक जिन्होंने चेदोरलाउमर के साथ गठबंधन किया था, उत्तर की ओर शिनार नामक क्षेत्र में रहता था, वही स्थान जिसे निम्रोद ने अपना घर कहा था और जहां उर अब्राहम का गृह नगर स्थित था। एलाम नामक स्थान जो चेदोरलाउमर का राज्य था, या बेहतर शहर राज्य था, को बाइबल के एक अन्य नाम शूषण, जिसे हम एस्थेर की पुस्तक में पाते हैं, से भी जाना जाता है। आज इसे एक और नाम खुजिस्तान से भी पुकारा जाता है। याद रखें, हमें बाइबल में लोगों और स्थानों के लिए कई नाम मिलेंगे जो सदियों से बदलते हैं।
दोनों भाषाओं के बदलने और किसी शहर के प्रतिद्वंद्वी राजा या साम्राज्य के हाथों में बदलाव के परिणाम स्वरूप एलाम, शूषण और खुजिस्तान सभी एक ही स्थान है। और आधुनिक समय में यह स्थान दक्षिण पश्चिमी ईरान में ऊर से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है, इसलिए संभवतः शिनार और एलाम की सीमा साझा होती है।
राजा टाइडल को हित्तियों का राजा माना जाता है, इसलिए उनके क्षेत्र को गोयम कहा जाता है, जिसमें पश्चिमी तुर्की और सीरिया के क्षेत्र शामिल थे। आप में से जिन लोगों ने तो री बहुत इब्रानी पर ही है, वे जानते हैं कि इब्रानी वचन गोमी का अर्थ राष्ट्र है और इसका अर्थ अन्य जाति भी है। अब्राहम से पहले गोयम एक बहुत ही सामान्य शब्दार्थ वाला राष्ट्र था, ठीक वैसे ही जैसे हम आज राष्ट्र वचन का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बार जब परमेश्वर ने अब्राहम को अलग कर दिया और फिर उसे पहले इब्रानी के रूप में नामित किया, जिसने उसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किए गए लोगों के एक विशेष और अद्वितीय राष्ट्र के रूप में अलग कर दिया, तो गोयम वचन ने तो रा अलग स्वर ले लिया। तब इसका अर्थ था अब्राहम और उसके लोगों को छोड़कर दुनिया के सभी अन्य राष्ट्र और लोग। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व तक गोयम का अर्थ अन्य जाति राष्ट्र या अन्य जाति लोग था। यहां उत्पत्ति 14 में यह बहुत संभव है कि जो भी प्राचीन काल में उत्पत्ति के इस अध्याय को संशोधित करने वाला अंतिम व्यक्ति था, वह बस यह दिखा रहा था कि मूल शास्त्रीय दस्तावेजों में राजा टाइडल ने जिस राज्य पर शासन किया था उसे लिखा और नामित नहीं किया गया था, इसलिए वह बस सामान्य वचन गोयम डाला गया, जो दर्शाता है कि टाइडल वास्तव में किसी न किसी राष्ट्र का राजा था। यह काफी नए पुरातात्विक नमूनों के माध्यम से है कि अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि राजा टाइडल ने हित्तियों नामक लोगों पर शासन किया था, और वैसे हित्ती उस युग की विशाल, प्रभावशाली और बहुत उन्नत संस्कृति थे। मुझे संदेह है कि जब उत्पत्ति पहली बार लिखी गई थी, राजा टाइडल ने किन लोगों पर शासन किया यह बताना उतना आवश्यक नहीं था जितना आज आधुनिक दुनिया में किसी भी साक्षर संस्कृति के लिए यह समझाने की आवश्यकता होगी कि कौन सा राष्ट्र का राष्ट्रपति बुश है। यह सामान्य ज्ञान है।
इन सहयोगी राजाओं के क्षेत्रों के बीच सामान्य तत्व जो मध्य पूर्व में आकर युद्ध करने वाले थे वह यह है कि वे सभी उस क्षेत्र में थे जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं, और उनके पास जो क्षेत्र थे वे पर्याप्त थे।
इस जिले ने जिसने विद्रोह किया था उसके अपने स्वयं के शासक थे, और हमें उनके नाम दिए गए हैं बेरा, बिरशा, शिनाब, शेम एबर और सोअर के अनाम शासक। हमें बताया गया है कि उन्होंने एक शांति संधि के हिस्से के रूप में 12 वर्षों तक चेर्द और लाओमर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इन छोटे राजाओं में से प्रत्येक ने उन 4 मेसोपोटामिया के राजाओं की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी सेनाओं और बहुत सीमित क्षेत्रों पर शासन किया। संधि के 13वें वर्ष में इन शासकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका सीधा अर्थ है कि वे मेसोपोटामिया में इन अनुपस्थित जमींदारों को कर देते देते थक गए थे और अधिक भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इसलिए एक वर्ष बाद चेर्दोर लाओमर और उसके सहयोगियों ने दक्षिण की ओर मार्च किया और विद्रोही जिले पर हमला किया।
मित्र देशों की सेनाएं सिद्दीम की घाटी में मिली, एक घाटी जो अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह अब मृत सागर का हिस्सा है। यह बाइबल में उन स्थानों में से एक है जहां पर संशोधन हुआ था, क्योंकि जब यह घटना घटी और लिखी गई तब सिद्दीम की घाटी अस्तित्व में थी। बाद में जब एक बाइबल की कॉपी करने वाला पाठ की प्रतिलिपि बना रहा था तो उसने अब मृत सागर वचन जोड़ दाज दी, अन्यथा किसी को नहीं पता होता कि अब जलमग्न सिद्दीम घाटी क्या और कहां है। इससे भी अधिक, संपादक ने जो वचन लिखे वे वास्तव में मृत समुद्र नहीं थे बल्कि नमक समुद्र थे। बाद में भी जब साल्ट सी का नाम चलन से बाहर हो गया और इसे मृत सागर के नाम से जाना जाने लगा, तो बाइबल के प्रतिलिपिकारों ने स्वाभाविक रूप से साल्ट सी के बजाय मृत सागर का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इनमें से कोई भी ठोस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, न ही यह स्थान या अर्थ बदलता है। यह स्पष्ट करता है और उन तथ्यों को सामने लाता है जो अन्यथा अस्पष्ट और लुप्त हो गए होते। यह बाइबल संशोधन का सबसे विशिष्ट प्रकार है। भूगोल के शौकीनों के लिए आपको यह जानना भी अच्छा लगेगा कि मृत सागर मूल रूप से दो भागों में बंटा है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी वह है जो अब्राहम के समय में अस्तित्व में था। यह बहुत गहरा था, लगभग 1300 फीट। अब्राहम के समय के बाद तक दक्षिणी भाग अस्तित्व में नहीं था और यह उत्तरी भाग के भर जाने और फिर सिद्दीम की घाटी में बहने का परिणाम था, जो निकटवर्ती और दक्षिण में थी। इसलिए सिद्दीम की घाटी पानी से भर गई और बस नए विस्तारित मृत सागर का अपेक्षाकृत उथला हिस्सा बन गई।
मेसोपोटामिया के राजाओं ने जो मार्ग अपनाया वह पहले से ही सुविख्यात किंग्स हाईवे था, जो उत्तर में दमिश्क से लेकर अंततः मिस्र तक फैला हुआ था। उन्होंने अश्तेरोथ कारनेइम नामक स्थान पर रफाइम पर हमला किया और हाम में जुजिम, ये निश्चित नहीं है कि वह कहाँ है, शावेह किरैथाइम में, एमिम और अंततः दक्षिण में सेईर के क्षेत्र में होरीट्स पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। फिर बाद में वे उत्तर की ओर वापस चले गए और कादेश में अमेलिकियों को हराया, जिसे एन मिशपत भी कहा जाता है। अब रफाइम, जुजिम और एमिम नामक लोगों को पहचानना मुश्किल है। कई पाठों पहले हमने नेफिलिम के बारे में बात की थी, दिग्गजों की वह जाति या जल प्रलय से पहले शक्तिशाली और अत्याचारी लोगों की बात की जाती थी। माना जाता है कि वे गिरे हुए स्वर्गदूतों के मानव मादाओं के साथ संभोग का परिणाम थे। कई संतों का मानना है कि रफाइम, जुजिम और एमिम जल प्रलय के बाद एक प्रकार के नेफिलिम हो सकते हैं। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि वे भी एक कबीला के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए यह व्यवस्था अधिक प्रतीत होता है और उनके नाम उस क्षेत्र क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक भाषा और संस्कृति को दर्शाते हैं। लेकिन यह अनुमान है, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये तीन समूहों के लोग कौन थे। उल्लिखित अन्य नाम जैसे होराइट्स, अमेलिकाइट्स और एमोराइट्स प्राचीन मध्य पूर्वी कबीलों के लिए अच्छी तरह से प्रमाणित हैं। जब विद्रोही राजाओं को पता चला कि उन्हें उन सेनाओं पर प्रतिक्रिया करनी होगी जो उनके करीब आ रही थीं, तो वे एकत्र हुए और सिद्दीम की घाटी में राजा चेरदोरलाउमर की सेनाओं से मिले। इसलिए विस्तार में जाने के बिना इस विद्रोही जिले के विभिन्न शासक चेरदोरलाउमर और उसके लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए सामने आए और जैसा कि किसी ने उम्मीद की होगी, वे पराजित हो गए। चेरदोरलाउमर की सहयोगी सेना ने जिले की सभी खाद्य आपूर्ति, उनकी मूल्यवान संपत्ति और यहां तक कि कुछ लोगों को दास के रूप में उपयोग करने के लिए ले लिया। ये उन दिनों में सामान्य युद्ध प्रोटोकॉल था। गुलाम बनाए गए लोगों में लूत और उसका परिवार भी शामिल था, जो हमले के समय सदोम में रह रहे थे। अब्राहम ने सुना कि लूत का अपहरण कर लिया गया है और वह तुरंत अपने घर से 318 लोगों को ले गया और लूत को बचाने के लिए निकल पड़ा। जिस समय अब्राहम को इसकी खबर मिली, वह कुछ कनानी लोगों के बीच रह रहा था, जिनके साथ उसने स्पष्ट रूप से संधि के माध्यम से एक औपचारिक गठबंधन किया था, लेकिन उसने इन कनानियों में से किसी को भी अपनी मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, बल्कि जिन 318 लोगों को वह अपने साथ ले गया था, वे अब्राहम के वफादार लोग थे, क्योंकि कई लोग उसके कबीले में पैदा हुए थे और उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। इससे हमें इस बात का अंदाजा मिलता है कि अब्राहम बहुत ही कम समय में कितने बड़े राष्ट्र या लोगों का रूप धारण कर चुका था। इसका मतलब यह नहीं है कि अब्राहम इन सभी पुरुषों का जैविक पिता था। लगभग निश्चित रूप से ये कई नौकरों और दासों के बच्चे थे, गुलामों के रूप में खरीदे गए लोग, जिनमें से कई अब्राहम के पास थे, परिवार का हिस्सा माने जाते थे। क्रूर और अधर्मी अफ्रीकी दास व्यापार के परिचित इतिहास के कारण, जिसने प्रारंभिक अमेरिका में इतने सारा फील्ड श्रमिकों को आपूर्ति की थी, हमें बाइबल के इब्रियों के बीच दासता की मात्रा के बारे में बहुत विकृत विचार मिलता है। इब्रियों के बीच गुलामी आधुनिक समय के गोद लेने से बहुत दूर नहीं थी, जहां कोई अक्सर अपने बच्चे को गोद लेने के अधिकार के लिए मां को भुगतान करता है, या कम से कम गर्भावस्था और प्रसव के दौरान
उसके सभी चिकित्सा खर्चों के साथ साथ वजीफा भी देता है। इसलिए भले ही अब्राहम के प्रत्यक्ष बच्चों के पास निश्चित रूप से इन दासों और इन दासों से पैदा हुए बच्चों के ऊपर विरासत के अधिकार और अधिकार थे, दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। वे आम तौर पर कबीले के मूल्यवान और प्रिय सदस्य थे और आम तौर पर उन्हें सम्मान और प्यार दिया जाता था।
अब्राहम और उसके योद्धा इन राजाओं का उस स्थान तक पीछा करते रहे जो अंततः दमिश्क सीरिया के रूप में जाना जाने लगा, बहुत दूर तक। ध्यान दें कि आयत 14 कहती है कि वे दान के क्षेत्र तक चले गए। यहां एक और संशोधन है, क्योंकि दान का नाम याकूब के पुत्रों में से एक के नाम पर रखा गया था, इसराइल के 12 गोत्रों में से एक। याकूब अब्राहम का अंतिम पोता था, दान याकूब का अंतिम पुत्र था, और भूमि को निर्गमन के बाद दान की कबीला का अंतिम स्थान कहा जाता था। इसलिए अब्राहम द्वारा लूत को बचाने की इस कहानी के घटित होने के कम से कम 600 वर्षों तक यहां दान नामक क्षेत्र का नामकरण संभवतः नहीं किया जा सका।
अब्राहम और उसके लोगों द्वारा रात में चेरदोरलाओमर की थकी हुई सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला करने और जीत हासिल करने के बाद सारी लूट बरामद कर ली गई और लूत और उसके परिवार को मुक्त कर दिया गया, और उनके लौटने पर अब्राहम और उसके लोगों का आभारी शासकों, जिले के उन राजाओं और अब बहाल जिले के निवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिन्हें अपना अधिकांश सामान वापस मिल गया था। पद 18 से शुरू होकर हमें एक आकर्षक लेकिन संक्षिप्त कहानी मिलती है और हम बाइबल के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक से मिलते हैं, मेल्कीसेदेक, शालेम का राजा। एक राजा होने के अलावा हमें बताया गया है कि मेल्कीसेदेक एक महायाजक भी है और वह एलेलियन की पूजा करता है, परम प्रधान परमेश्वर की। मेल्कीसेदेक अब्राहम का स्वागत करने के लिए बाहर आता है, रोटी और शराब लाता है और अब्राहम को आशीष देता है, और फिर अब्राहम उसे बरामद की गई हर चीज का दसवां हिस्सा देता है। तो यहां एक दिलचस्प नाटक रचा गया है। दो शासक अब्राहम का स्वागत करने आते हैं, सदोम का राजा, एक दुष्ट स्थान का शासक, और मेल्कीसेदेक एक धर्मी स्थान का विध्वंसक था। इस कहानी में वास्तव में एक महत्वपूर्ण नमूना स्थापित किया गया है, और जैसे जैसे यह अध्याय 15 के पहले पदों में आगे बढ़ता है, शीघ्र ही इसके महत्व के बारे में पाएंगे। आइए इसके साथ थोड़ा समय लें, क्योंकि मैंने पाया है कि जब भी हम इन अजीब दृश्यों को देखते हैं तो उन्हें ध्यान से देखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा होता है, और यहां ये अलग नहीं है। मेल्कीसेदेक कौन है या क्या है? खुशी है कि आपने पूछा। समझने वाली पहली बात यह है कि मेल्कीसेदेक कोई औपचारिक या व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक उपाधि है, इसलिए हमें यह नहीं बताया गया कि यह व्यक्ति कौन है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति बुश का नाम राष्ट्रपति नहीं, जॉर्ज बुश है। राष्ट्रपति उसके द्वारा धारण किए गए पद का मात्र नाम है। यह उन सभी तथाकथित परमेश्वर के नामों के बारे में भी सच है जिनका हमने अब तक उत्पत्ति में उपयोग किया है। वास्तव में इस कहानी में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया शीर्षक एल एलियन, गॉड मोस्ट हाई भी उस तरह का नाम नहीं है जैसा हम आमतौर पर इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन यह इंगित करता है कि मेल्कीसेदेक बाइबल के परमेश्वर में विश्वास करता है, और वह शायद उन कुछ एकेश्वरवादियों में से एक है जो केवल एक परमेश्वर की पूजा करते हैं जो अभी भी मौजूद है। तो परमेश्वर के तथाकथित नामों में से कोई भी वास्तव में उसका नाम नहीं है, वे सभी उपाधियां हैं, लेकिन वे कुछ और भी हैं। जैसे राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पद का शीर्षक है, वैसे ही परमेश्वर की ये विभिन्न उपाधियां उस पद अधिकार का संकेत देती हैं जिसे परमेश्वर धारण करते हैं। इसके अलावा हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जब बाइबल एल एलियन, एल शादाई और परमेश्वर की कई अन्य उपाधियों को नाम के रूप में संदर्भित करती है, तो इसका मतलब टॉम या बेकी या जेरी जैसा उचित नाम नहीं है, बल्कि बाइबल में अधिकांश समय नाम इब्रानी में शेम का अर्थ प्रतिष्ठा होता है। तो परमेश्वर के नाम प्रतिष्ठा के रूप में वास्तव में कई हैं। वह सर्वोच्च परमेश्वर है स्वर्गीय सेनाओं का परमेश्वर है, वह परमेश्वर है जो मुझे छिपाता है, वह परमेश्वर है जो प्रदान करता है, वह परमेश्वर है जो चंगा करता है, और भी बहुत कुछ है। मूसा के समय तक ऐसा नहीं होगा कि ईश्वर वास्तव में अपना औपचारिक और व्यक्तिगत नाम प्रकट करेगा, एलभेम्ब जो टॉम या बेकी या जेरी जैसा है। यहवे कोई प्रतिष्ठा या उपाधि नहीं है। इसलिए जहां तक मेल्किसेदेक शीर्षक का संबंध है, मेल्की का अर्थ है राजा और सेदेक का अर्थ है धार्मिकता। तो यह एक शीर्षक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है मेरा राजा धार्मिकता है या धार्मिकता का राजा। और यह इस अज्ञात व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अर्थ में एक नाम है।
अब इस दिलचस्प व्यक्ति के बारे में कुछ अनमोल वचन कहे गए हैं, लेकिन हमें इससे जितना हो सके उतना सीखने की जरूरत है, क्योंकि उसे नया नियम में एक शक्तिशाली तरीके से संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है कि अब्राहम के मेल्किसेदेक से मिलने के 1900 साल बाद भी। जाहिर तौर पर उनके बारे में जितना लिखा गया है उससे कहीं अधिक जाना और याद किया गया है। इब्रानियों के लेखक मेल्किसेदेक को इसराइल के इतिहास और शायद इसराइल के आध्यात्मिक भविष्य के एक बहुत ही विशेष भाग के रूप में देखते हैं।
आइए नया नियम के इस मुख्य भाग को देखें और तोरह और इब्रानियों की नया नियम पुस्तक के बीच कुछ संबंध बनाएं।
इब्रानियों 7:1-17 पर हैं।
प्राचीन इब्रानी संतों और विद्वानों के पास इस रहस्यमय साथी के बारे में कहने के लिए कुछ दिलचस्प बातें थीं, जिन पर संत पौलुस और अन्य लोग स्पष्ट रूप से भरोसा करते थे और सत्य मानते थे। अन्यथा यीशु हामाशियाज के साथ कुछ महत्वपूर्ण समानताएं खींचने के लिए मेल्किसेदेक का उपयोग नहीं किया गया होता। और समझने वाली पहली बात यह है कि मेल्किसेदेक वास्तविक था, वह कोई प्रतीक या रूपक नहीं है। यहां तक कि ईसा मसीह के युग के यहूदी रोमन इतिहासकार यूसुफ ने भी सत्यापित किया कि मेल्किसेदेक एक वास्तविक व्यक्ति था। उदाहरण के लिए जिन अंशों को हमने अभी पढ़ा है उनमें हम पाते हैं कि वह शालेम नामक शहर का राजा और याजक था। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि उस शहर को शालेम कहे जाने से पहले इसे सैदेक कहा जाता था, और यह स्थान या तो यरूशलेम था या उसके निकट था, जो बाद में आएगा। कुछ प्राचीन शास्त्रियों ने कहा कि मेल्किसेदेक वास्तव में नूह का पुत्र शेम था। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब शेम का दूसरा आगमन या शेम जैसा व्यक्ति युवा शायद शेम का वंशज भी है? नहीं, इन शास्त्रियों का मतलब था कि मेल्किसेदेक वास्तविक सच्चा शाब्दिक शेम था, और यह पूरी तरह से संभव है क्योंकि शेम बाइबल के रिकॉर्ड और कालक्रम के अनुसार इस समय भी जीवित था। और निसंदेह शेम को अच्छाई की रेखा बनना था जो नूह से फैली हुई थी, और यदि इस समय जीवित कोई भी एक ईश्वर के प्रति पूरी तरह से वफादार था तो वह शेम ही था, जो महान जल प्रलय से बाहर निकला था।